दिन भर 6 जून दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। कतर सऊदी अरब के साथ विवाद में, बातचीत के पक्ष में। विश्लेषकों का मानना है कि असली जड़ कतर के ईरान के साथ नजदीकी संबंध।
The main issue here is the Qatari policy towards Iran. The GCC has taken a more stringent position led by Saudi Arabia and the United Arab Emirates against Iran.
देखेंगे एनडीटीवी के प्रमोटरों पर सीबीआई के छापे, बदले की कार्रवाई है या नहीं।
बड़ा पहलू ये है कि एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय के घर पे जो छापे पड़े हैं, क्या वो मीडिया को मजल करने की कोशिश है? क्या वो प्रेस की आजादी पर, स्वतंत्रता पर आघात है?
जिक्र होगा चैंपियंस ट्रॉफी का भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। सऊदी अरब समेत 6 देशों की ओर से कूटनीतिक संबंध खत्म किए जाने के बाद कतर ने बातचीत की पेशकश की है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा है कि सभी पक्षों को बातचीत के जरिए मतभेद दूर करने चाहिए। वहीं सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र ने कतर के विमानों के अपने हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। सऊदी अरब समेत 6 देशों ने कतर पर चरमपंथी संगठनों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। कतर ने इन आरोपों को गलत बताया है। सीरिया में अमेरिकी सेना के आला कमांडर ने जानकारी दी है कि इस्लामिक स्टेट को रक्का से बाहर निकालने का संघर्ष शुरू हो चुका है। लेफ्टिनेंट जनरल स्टीव टाउनसेंड ने कहा है कि अमेरिका समर्थित विद्रोहियों की ओर से शुरू हुआ अभियान इस्लामिक स्टेट की विचारधारा पर बड़ी चोट होगा। कुर्द लड़ाकों की अगुवाई वाली SDF ने पहली बार रक्का के बाहरी हिस्से पर आक्रामक अभियान शुरू किया है। उन्हें अमेरिका की अगुवाई वाली गठबंधन सेना के लड़ाकू विमानों का समर्थन मिल रहा है। गठबंधन सेना का मानना है कि रक्का में इस्लामिक स्टेट के करीब 4,000 लड़ाके हैं। सीरिया के रक्का में अमेरिका समर्थित विद्रोहियों के अभियान को लेकर तुर्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने अमेरिका पर चरमपंथी संगठन के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी भी जारी की है। तुर्की के प्रधानमंत्री ने कहा,
बिल्डिंग गिवे रक्का अमेरिका विदेशी देवलेट।
जैसा आप जानते हैं कि रक्का में अमेरिका ने चरमपंथियों के साथ मिलकर अभियान शुरू किया है। हालांकि हमने उन्हें कई बार हिदायत दी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा सहयोगी और दोस्त चरमपंथी समूहों के साथ सहयोग कर रहा है। वो सोचते हैं कि एक चरमपंथी संगठन की मदद से दूसरे को खत्म किया जा सकता है। ऐसी कोई घटना जो हमारे देश के लिए खतरा बन सकती हो, हम उसकी इजाजत नहीं देंगे। हम ऐसी किसी भी हरकत का तुरंत जवाब देंगे। ये थे तुर्की के प्रधानमंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अफगानिस्तान से मिली रिपोर्टों के मुताबिक हेरात में हुए धमाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि हो सकता है कि विस्फोटक एक वाहन में रखा गया हो। मरने वालों में कुछ लोग नमाज के लिए जा रहे थे। इसके पहले आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने बताया कि काबुल में बीते हफ्ते हुए बम धमाके में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट काउंसिल की कड़ी आलोचना की है। हेली का कहना है कि काउंसिल वेनेजुएला संकट के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। निकी हेली ने कहा कि निकोला मादुरो की सरकार वेनेजुएला में मानवाधिकारों की खराब होती स्थिति पर होने वाली किसी भी वार्ता को रोकने में कामयाब हो रही है और इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा,
Tragically, the Maduro regime's effort to silence its critics.
दुखद है कि आवाज़ उठाने वालों को चुप कराने के मादुरो सरकार के प्रयास यहाँ जनेवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक प्रभावी हैं। वेनेजुएला अपनी सदस्यता का इस्तेमाल मानवाधिकार उल्लंघन पर होने वाली किसी भी सार्थक चर्चा पर रोक लगाने के लिए करता है। काउंसिल के पास इसके लिए कोई बहाना नहीं हो सकता। वेनेजुएला में होने वाली ज्यादतियों को नज़रअंदाज करते हुए ये खुद को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार संगठन नहीं मान सकती है। ये थे संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। शेर बहादुर देउबा 4थी बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। 70 साल के देउबा इस पद के लिए अकेले उम्मीदवार थे। 558 में से उनके समर्थन में कुल 388 वोट पड़े, जबकि 170 वोट उनके खिलाफ गए। इसके पहले बीते महीने पुष्प कमल दाहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत आज भी कतर और सऊदी अरब से। कतर और सऊदी अरब के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ने की खबरों के बीच कतर दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू करने पर जोर दे रहा है। कुछ देशों ने कतर से यह कहते हुए संबंध विच्छेद कर लिए हैं कि वो खाड़ी में चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात ने कतर के विमानों के लिए अपनी वायु सीमा बंद कर दी है। कुवैत ने, जो कि अभी इस विवाद से दूर है, पेशकश की है कि वो दोनों पक्षों के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। कतर के अल जजीरा नेटवर्क से बात करते हुए कतर के विदेश मंत्री ने कहा है कि कुवैत के अमीर इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज सऊदी अरब जा रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अल जजीरा को बताया कि कतर चाहता है कि इस मुद्दे पर साफ गोई और ईमानदारी से बात की जाए। सोमवार को 6 देशों बहरीन, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमारात, लीबिया और मालदीव्स ने कतर से कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए थे। बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात ने वहां रहने वाले कतर के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और अपने नागरिकों के वहां जाने पर रोक लगा दी है। ब्रुकिंग्स दोहा सेंटर के थिंक टैंक के विजिटिंग फेलो अदिल अब्दुल गफ्फार का कहना है कि कतर के खिलाफ चरमपंथी शक्तियों के समर्थन का आरोप लगाना तो एक बहाना है। मुख्य मुद्दा है कतर की ईरान के प्रति नीति। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका नेतृत्व सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात के हाथ में है, ने ईरान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और इन देशों में इस तरह की राय है कि कतर की नीति ईरान के पक्ष में है। आदिल अब्दुल गफ्फार के शब्द। उधर अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने एक बार फिर शांति बरतने की अपील की है। हमें आशा है कि दोनों पक्ष अपने मतभेदों को बातचीत से सुलझा लेंगे और हम इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं कि वो साथ साथ बैठें और अपने मतभेदों को दूर करने का रास्ता निकालें। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन। मैंने थोड़ी देर पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पश्चिम एशिया मामलों के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा से संपर्क किया और पूछा कि खाड़ी में भारत के 70 लाख लोग काम करते हैं, जबकि कतर में काम करने वाले भारतीयों की संख्या 6 लाख है। इस गतिरोध का उन लोगों पर क्या असर होते हुए देखते हैं आप?
जो इंडियंस इस खाड़ी के देशों में और बाहर जो जाते थे कतार एयरवेज से, वो काफ़ी मुतासर हुए हैं, क्योंकि कतार एयरवेज कम से कम 14 इंडियन सिटीज भारतीय शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट, जैसा कैलिकट, कोचीन, त्रिवेंद्रम, मैंगलोर, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, गोवा से डायरेक्ट फ्लाइट्स दोहा को लेके वहाँ से दुबई और रियाद और कुवैत वहाँ ले जाते थे अट्रैक्टिव फेयर्स में, तो हजारों की तादाद में अब वो परेशान है। दूसरी बात यह है कि जो इंडियंस खाड़ी में हैं, जो बिलियनर्स हैं, उनका काफी बिजनेस कतार में इन्वेस्टमेंट की तरह है, चाहे रियल एस्टेट में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, और ये लैंड बॉर्डर, सी बॉर्डर, एयर बॉर्डर क्लोज करने से इनका काफी नुकसान होगा। तीसरी बात यह है कि लोग वहाँ 6 लाख से ज्यादा हैं, उनका भी जो है अभी इनकी परेशानी और बढ़ सकती है अगर ये मेजर्स कड़े किए गए तो।
भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध हैं, ऐसे में डिप्लोमेटिक टाइटरोप जैसी बात नहीं हो गई भारत के लिए?
ये आपका मानना है कि ईरान के साथ भारत के ताल्लुकात गहरे हैं, मैं इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि काफी सदमहरी हुई है हाल में। हालांकि मोदी साहब वहाँ गए थे, लेकिन 2-3 विषयों पे भारत और ईरान के ताल्लुकात नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक तो चाबहार से ईरान परेशान है, दूसरा फरहत गैस टू वेल से भी परेशान है, और तीसरी बात जो भारतीय पाकिस्तान के कब्जे में है जाधव, वो चाबहार एरिया से कब्जा किया गया था और भारत मानता है कि ईरान इसमें कोऑपरेट नहीं कर रहा है। और जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, मोदी साहब वहां गए थे और काफी गर्म जोशी से उनका इस्तकबाल किया गया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स प्रॉमिस किए गए थे सऊदी अरब के तरफ से मनमोहन सिंह के दौरान और मोदी के दौरान, वो अभी तक आने बाकी हैं। दूसरी बात यह है कि राहिल शरीफ जब से वो इस्लामिक टेररिज्म अलायंस के चीफ बने हैं, यहाँ परेशानी हुई है काफी। तीसरी बात यह है कि जब ट्रंप रियाद आए थे उसके बाद जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो आर्म्स डील हुआ है जिसमें पाकिस्तानी एडवाइजर्स भी शामिल होंगे, उससे भी काफी भारत चिंतित है।
तो ये जो स्टैंड ऑफ है इसमें आपको क्या लगता है, अल्टीमेटली किस तरफ भारत का पक्ष रहेगा, सऊदी अरब की तरफ या कतर की तरफ?
देखिए, ये बहुत ही नाजुक मरहले से भारत गुजर रहा है क्योंकि हमारे इंटरेस्ट, भारत के इंटरेस्ट एनर्जी सिक्योरिटी, इंडियन वर्कर्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस खाड़ी में बहुत जरूरी है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि अगर ईरान पाकिस्तान जुड़ जाते हैं तो काफी बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा, और ईरान के साथ अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो भारत की अफगान पॉलिसी पे भी काफी क्वेश्चन मार्क होंगे।
पाशा साहब, एक चीज की तरफ आपका ध्यान और दिलाना चाहेंगे कि सऊदी अरब से इतने करीबी संबंध होने के बावजूद पाकिस्तान बिल्कुल न्यूट्रल रहा है, उसने अपने संबंध नहीं तोड़े हैं कतर से।
जी, ये बहुत अहम बात है। ये एक्चुअली पिछला डेवलपमेंट था जब सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि अपने ट्रूप्स यमन वार में भेजें, जब पाकिस्तान ने मना किया तो वही पॉलिसी ये भी देखने में आती है कि क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी भी हैं और गैस भी वहीं से आती है, तो पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से गहरे हैं कंपेयर टू इंडिया के, तो वो भी उनका डिलेमा है। लेकिन मेरे ख्याल से उनका झुकाव ईरान की तरफ ज्यादा है बनिस्बत इंडिया के।
ये थे जेएनयू के प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा। और अब रुख करते हैं भारत का, बात मध्य प्रदेश की, जहां किसानों के आंदोलन ने मंगलवार को उग्र रूप धारण कर लिया। पुलिस की फायरिंग में मंदसौर में 4 किसानों की मौत हो गई है जबकि 4 अन्य किसान घायल हो गए हैं। इस घटना के विरोध में बुधवार को विपक्षी कांग्रेस और किसान संगठनों ने बंद की घोषणा की है। भोपाल से शुरेनियाजी की रिपोर्ट।
प्रदेश में 1 जून से चला आ रहा किसानों का आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। मंदसौर में पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर फायरिंग कर दी जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। मंदसौर जिले में आंदोलनकारियों ने कल रात रेलवे फाटक तोड़ दिया और पटरियां उखाड़ने की भी कोशिश की, जिसके बाद क्षेत्र का रेल यातायात भी बाधित हो गया। अब मंदसौर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि फायरिंग पुलिस ने की है।
देखिए, पिछले 5-6 दिन से लगातार असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर हमला किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस लगातार धैर्य के साथ कार्रवाई कर रही है। अभी भी पुलिस के द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई है। जो घटना हुई है उसकी हम जांच कर रहे हैं और ये गोली कहां से चली, किसके द्वारा चलाई गई, हम लोग जांच कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा कोई गोली नहीं चलाई।
मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। माना जा रहा है कि आंदोलनकारी सोशल मीडिया के जरिए लामबंद हो रहे थे। वहीं किसानों द्वारा तोड़फोड़ की सूचना दूसरे स्थानों से भी आ रही है। हालांकि गृह मंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं कि आंदोलन उग्र हो रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलनकारियों को विपक्षी पार्टी से मदद मिल रही है।
देखिए, कहीं पर कोई आंदोलन उग्र नहीं हो रहा है। पिछले पूरे मध्य प्रदेश में कुल 2 जिले हमारे ऐसे हैं, मंदसौर और नीमच। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व किसानों के नाम पर पिछले 5-7 दिन से लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं और इनको पीछे से कुछ स्थानों पर कांग्रेस के लोग समर्थन कर रहे हैं और इसलिए ये घटना हुई है। परंतु बाकी पूरे प्रदेश में कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है और ना पुलिस के द्वारा गोली चलाई।
किसान अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं जिनमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, कर्ज माफी, उचित समर्थन मूल्य, मंडी का रेट निर्धारण और किसानों को पेंशन सहित अन्य मांगे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हड़ताल समाप्त हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के कई धड़े हड़ताल पर अड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने मृतकों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है। घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
उधर महाराष्ट्र के किसानों की हड़ताल का भी आज 7वां दिन है। किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने और कर्ज माफी की मांग उठा रहे हैं। 1 जून से शुरू हुई हड़ताल को नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद 48 घंटे बाद वापस ले लिया था, लेकिन किसान क्रांति जन आंदोलन के नेता जय जी राव सूर्यवंशी और अन्य नेताओं के इस निर्णय का काफी विरोध हुआ। परसों किसानों ने महाराष्ट्र बंद रखा और अब बुधवार को मुंबई में एक बैठक बुलाकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया है। इस हड़ताल से आम लोग भी परेशान हैं। मुंबई से अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में किसानों की हड़ताल का आज 7वां दिन था। पिछले 6 दिनों की तरह आज भी किसानों ने जगह जगह रास्ता रोको किया। आज अहमदनगर के पुणतांबा गांव में हुई किसान क्रांति मोर्चा की बैठक में आने वाले दिनों में आंदोलन तीव्र करने के लिए रेल रोको करने का निर्णय लिया गया। हड़ताल की वजह से सब्जी मंडियों में आवक आधे से कम हो गई है। 17 जिले में सब्जियों की आवक पूरी तरह ठप हो गई है। इस हड़ताल का असर अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, पुणे, नासिक, अहमदनगर जिलों में दिख रहा है। आंदोलनकारी किसानों ने आज सरकारी दफ्तरों को ताला लगाकर काम बंद करवाया। इसी तरह का आंदोलन राज्य के अन्य शहरों में भी किया गया। इस हड़ताल का मुंबई पर कोई असर अब तक नहीं हुआ है। मुंबई के एपीएमसी व्यापारी अशोक वालुंज ने बीबीसी को बताया,
आज इनका आंदोलन फार्मर्स लोगों का बहुत तीव्र था, लेकिन नासिक छोड़ के जो बाकी का इलाका है, पश्चिम महाराष्ट्र है, उत्तर महाराष्ट्र है, वो इलाके में से एक सब्जी मंडी में 200 टेम्पो आए थे सब्जी के, और प्याज की 45 गाड़िया मंडी में आने के कारण हड़ताल में इतना मुंबई वासियों को इतना आज प्रॉब्लम में हुआ, माल पूरी तरह से मुंबई में पहुंचा है।
ये थे अशोक वालुंज। यदि सरकार ने किसानों को कर्ज माफी नहीं दी तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और भी तीव्र करने का निर्णय किसानों ने लिया है। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,510, 9,460, 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। एनडीटीवी के प्रमोटरों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के 4 ठिकानों पर सीबीआई की छापामारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कार्रवाई बदले की भावना से की गई है या फिर कानून अपना काम कर रहा है। प्रणय रॉय और राधिका रॉय पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने एक निजी बैंक को 48 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। उधर एनडीटीवी का आरोप है कि ये बदले की कार्रवाई थी। बहस सीबीआई की भूमिका पर भी हो रही है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक एनके सिंह और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव से बात की। पहला सवाल एनके सिंह से पूछा गया कि क्या सीबीआई का इस्तेमाल सरकारें अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए करती रही हैं।
ये कुछ हद तक सही भी है और सही नहीं भी है। आप जिस दृष्टिकोण से देखिए, जो पॉलिटिकल क्लास है, हम लोग, मैंने 10 साल सीबीआई में बिताया है और मैंने ऐसे प्रधानमंत्री भी देखे हैं जो कि कभी भी सीबीआई के काम में दखल नहीं देते थे, या सीबीआई का इतिहास भी उलट के देखा है, लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने इसका निर्माण किया। वो उनका जीरो टॉलरेंस था टुवर्ड्स करप्शन। सरदार पटेल थे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, कभी भी इंटरफेयर नहीं किया। मैंने जब सेंडकिट्स केस मैं कर रहा था जिसके वो टारगेट थे, और मुझे कभी लगता था कि जब उनसे बात होती थी पार्लियामेंट के क्वेश्चन के तहत या तभी भी, तो मैं हमेशा सोचता कि ये कभी पूछते क्यों नहीं है कि केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या है, वो कभी नहीं पूछते थे।
संजीव जी, ये आरोप लगते रहे हैं सीबीआई के ऊपर हमेशा से, और ख़ासतौर से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का जहाँ तक सवाल है, कई नाम हैं और कई सरकारें हैं जिन्होंने समय समय पर कार्रवाइयाँ की हैं जिस पर आरोप लगते रहे हैं, तो क्या वाकई में ये एक भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं?
बड़ा पहलू क्या है इस डिबेट का? बड़ा पहलू ये है कि एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय के घर पर जो छापे पड़े हैं, क्या वो मीडिया को मजल करने की कोशिश है? क्या वो प्रेस की आज़ादी पर, स्वतंत्रता पर आघात है? और उससे भी बड़ी बात, क्या एक प्रणय रॉय और एनडीटीवी पर छापे मार के क्या दूसरे मीडिया को, सबको ये संकेत देने की कोशिश है कि देखो बच्चों, सावधान हो जाओ, है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तो ये जो जुमला आ रहा है बार बार कि नोबडी इज अबव द लॉ एंड लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, इसमें भी एक भय या आतंकी छाप दिखती है।
संजीव जी, सीबीआई ने आज एक उन्होंने ये बयान जारी करके कहा है कि एनडीटीवी के ना तो स्टूडियो में छापा मारा गया है और ना ही एनडीटीवी के न्यूज रूम्स को निशाना बनाया गया है। वो तो आरआर एंड आर होल्डिंग्स जो कंपनी है जिसने शेयर खरीदे थे, जिसके ऊपर आरोप लगे हैं एफआईआर में, उसके ठिकानों पर और उसके डायरेक्टर्स के यहाँ छापामारी की है। तो ये जो टेक्निकल लैंग्वेज है,
एनडीटीवी इज अ चैनल इज अ ग्रुप जो कि बहुत ही जबरदस्त ढंग से प्राइम मिनिस्टर और उनकी खासकर प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत उनके खिलाफ रहा है पिछले 10-15 साल से, 2002 के गुजरात दंगों से। तो एक पर्सनल एलिमेंट है इस पूरी स्टोरी में। अब वो सीबीआई के एक्शन में परिलक्षित रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी उसमें मैं टिप्पणी नहीं कर रहा। देखिए कल आप देखिए कितने लोगों ने ट्वीट किए, इन सब में सबसे बैलेंस ट्वीट मुझे किसकी लगी, मुझे रामचंद्र गुहा की ट्वीट लगी। रामचंद्र गुहा ने ये बात कही कि देखिए जो प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट थी वो किस बात का परिचायक थी, सिनोनिमस थी किस बात से, करप्शन भ्रष्टाचार से, अपने फ्रेंड्स को फेवर करने से। और ये गवर्नमेंट किस बात को सिंबलाइज करती जा रही है कि ये विक्टिमाइजेशन में हैरेसमेंट में विश्वास करती है। तो ये मुझे सबसे क्लासिक ट्वीट लगी थी कल की।
संजीव श्रीवास्तव साहब ने एक सवाल किया, सीबीआई ने तो मामला टेकअप किया है और कितने हजार करोड़, 40,000 करोड़ रुपए बैंकों के, बाकी ये 48 करोड़ तो ये मामला है, लेकिन जो लोन डिफॉल्टर्स हैं जो सरकारी बैंक से, ये तो प्राइवेट बैंक की बात है। तो
सलमान, जैसे सीबीआई ने आज कहा है ना कि बात लोन डिफॉल्ट की नहीं है, सब बात में पेचीदगी है, बात परसेप्शन की है।
तो ये सवाल तो ऑब्वियस था कि क्या सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन दूसरे बैंकों पर नहीं है जो नेशनलाइज्ड है, ये तो प्राइवेट बैंक था, यहाँ ज्यूरिसडिक्शन है।
इन्होंने ठीक ही कहा कि सवाल परसेप्शन का है। 48 करोड़ का लोन का डिफॉल्ट करने के चलते प्रणय राय और उनके वाइफ और उनके घर पर छापा मारा गया है, तो लोगों को लग रहा है कि ये आपने ठीक कहा, करोड़ों का बात है। ये मालवा कहाँ चला गया, ललित मोदी कहाँ है, इतने बड़े सीबीआई के हैंड्स फुल हैं, इतने संगीत है मामले, इतने बड़े बड़े मामला हैं जिसका वो टेकअप नहीं कर पा रही है, तो उसमें खोज के ये 48 करोड़ या फिर उसको खींच के गुजरात।
पूरे रिस्पेक्ट के साथ कि लार्जर इशू आज ये नहीं है कि सीबीआई की फंक्शनिंग क्या है, वेरी ऑनेस्टली लार्जर इशू आज ये है कि क्या देश में प्रेस की स्वतंत्रता पर आघात करने का प्रयास है या नहीं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का प्रेस फ्रीडम के मुद्दे पर, और इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की तरह से गवर्नमेंट को देश की जनता को प्रेस को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई हमारा कोई और मतलब नहीं है, दाल में कुछ काला नजर आता है, और अगर नहीं है तो सरकार को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए जिससे लोगों के मन का ये संशय दूर हो।
पूर्व सीबीआई संयुक्त निदेशक एनके सिंह और वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव से बात कर रहे थे सलमान रावी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का सामना करने के लिए उपनिषद और गीता पढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, लेकिन क्या राहुल गांधी किताबों के जरिए भारत के मानस को समझ सकते हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? बीबीसी संवाददाता सुशील कुमार झा ने वरिष्ठ पत्रकार मधुकर उपाध्याय के सामने यही सवाल रखा।
बहुत सारी किताबें ऐसी हो सकती हैं जो उनको पढ़नी चाहिए, लेकिन दो पुस्तकें तो मैंडेटरी हैं, वो तो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए भारतीय मानस समझने के लिए, वो है पंचतंत्र और जातक का टेल्स। इन दोनों के अलावा पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी की किताब है और जातक का टेल्स में बौद्ध जो ग्रंथ है त्रिपिटक जो था उसमें ये आता है, और उसमें खुद्दक निकाय होता है उसमें ये शामिल है जातक कथाएं। इन दो के अलावा तीसरी किताब मुझे समझ में आती है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है जवाहरलाल नेहरू की, जो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव और पूरी दुनिया को भारत की नजर से देखने का तरीका, क्योंकि या तो आप भारत को भारत की तरह देखते हैं या बाहर वाले की तरह भारत को देखते हैं, लेकिन भारत से दुनिया को कैसे देखते हैं, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया से ज्यादा जरूरी किताब मुझे कोई दिखाई नहीं दे। फ्रीडम मूवमेंट में सेंट्रल फिगर है फ्रीडम मूवमेंट के महात्मा गांधी, उन पर डीजी तेंदुलकर की किताब है महात्मा, और ये 8 खंड में है, ये तो सिरहाने रखनी चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और महात्मा तो निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए, और चूंकि इतने सारे उपनिषद और आरण्य और ब्राह्मण और ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको पढ़कर आप बहुत बहुत ज्यादा कहीं कुछ पहुंच जाएंगे, अब आध्यात्मिक हो जाएंगे और दर्शन में आपकी रुचि हो जाएगी, उसकी जरूरत उस तरह नहीं है। लेकिन इसकी एक पुस्तक है और वो पुस्तक है धर्मशास्त्र का इतिहास। ये 5 वॉल्यूम में है, पांडुरंग वामन काणे साहब ने लिखी थी है, और उसमें आपको इन सब के बारे में डिटेल्स, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। एक अतहर अब्बास रिजवी साहब हुआ करते थे, एक किताब है जो बहुत चर्चित है, द वंडर दैट वाज इंडिया, जो इंडियन एंगल से देख रहा है चीजों को और शुद्ध भारतीय है, उत्तर प्रदेश के हैं। तो उसमें उनकी किताब है सन 1200 से 1700 के भारत में, मतलब तुर्कों के आने से और अंग्रेजों के आने तक का इतिहास। उन्हीं की एक छोटी सी पुस्तक है लैंडमार्क्स ऑफ साउथ एशियन सिविलाइजेशन, जिसको आप सार्क कहते हैं, वो इंस्टेंटली निकल कर आता है। सार्क तो अब बना है, अतहर अब्बास रिजवी ने किताब पहले लिखी थी, लेकिन वो उसको साउथ एशियन सिविलाइजेशन कहते हैं। तो वो है प्रोमिनेंटली, तो एकदम समझ में आता है, वो इतनी किताबें तो पढ़नी ही चाहिए। रिलीजन, उसमें रीजन, उसमें फिलॉसफी, उसमें सोसाइटी, उसमें लोग, और उसमें उसकी हिस्ट्री, और फिर उसके बाद मोरालिटी सिखाने वाली, जातक कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं। सवाल ये होता है कि कौन पढ़ रहा है और कितनी गंभीरता से पढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि गीता और उपनिषद, उनका ये भी ट्वीट था कि साहब मैं इसको आरएसएस से निपटने के लिए ये दोनों किताबें पढ़ रहा हूं, तो आपको लगता है कि आरएसएस से निपटने के लिए ये किताबें कितना काम आएंगी?
देखिए, वो कितने पढ़े लिखे, कितने विद्वान और कितना चीजों को समझने वाले हैं, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, और इसका जवाब इस तरह नहीं हो सकता है। बेसिकली आपको जो अपनी जमीन तलाश करनी है, हम जहां महसूस करता है कि वो कनेक्ट खत्म हो गया है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, लेफ्ट का नहीं है, जनता के साथ वो कनेक्ट नहीं है जो बीजेपी का है,
बिल्कुल,
तो वो कनेक्ट क्यों है वो समझ में आएगा अगर आप वो बेसिक जो पंचतंत्र है और जातक है उससे, और फिर उसके बाद उसको एक्सपैंड करते हैं जब आप इंडियन हिस्ट्री पर और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पर, तो आप उसको समझ सकते हैं और उसका जवाब हो सकता है। किसी को जवाब देने के लिए आपका विद्वान होना हो सकता है जरूरी हो, लेकिन सवाल यह है कि सामने वाला कितना विद्वान है।
मधुकर उपाध्याय से बात कर रहे थे सुशील कुमार झा। चैंपियंस ट्रॉफी में इस समय इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हो रहा है। इससे पहले इंग्लैंड एक मैच जीत चुका है, जबकि बारिश हो जाने के कारण न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एक अंक बांटने पड़े थे। कार्यक्रम में शामिल करते हैं राखी शर्मा को। राखी, बताइए क्या स्कोर है इस समय?
फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है, जिसने 1.5 ओवरों में 1 विकेट के नुकसान पर 2 रन बना लिए हैं। उसके कप्तान केन विलियमसन क्रीज पर मौजूद हैं, जिनका फिलहाल खाता नहीं खुला है, और मार्टिन गप्टल 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहला विकेट गिरा ल्यूक रॉन्ची के रूप में, जिन्हें अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिल पाया। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग को चुना। इंग्लिश टीम 49.3 ओवरों में 310 रन पर ऑल आउट हुई। सबसे अहम योगदान जो रूट के 64 रनों का रहा। इंग्लिश बल्लेबाजों के बीच 2-3 अच्छी साझेदारियां हुई, हालांकि विकेट गिरने का सिलसिला अंत तक जारी रहा। जोस बटलर 61 रन बनाकर नाबाद रहे। कीवी टीम की तरफ से कोरी एंडरसन और एडम मिल ने 3-3 विकेट लिए। टिम साउदी को 2 सफलताएं मिली। इससे पहले न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद उसके खाते में 1 ही अंक है, जबकि अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीतने वाली इंग्लिश टीम के पास 2 अंक है।
अच्छा, ये बताइए, ये तो रही क्रिकेट की चर्चा, फ्रेंच ओपन से क्या समाचार है?
जी, फ्रेंच ओपन से भारत के टॉप सीड महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और क्रोएशिया के इवान डॉडिंग की जोड़ी फ्रेंच ओपन के मिक्स डबल्स में, एक अन्य भारतीय पुरुष खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और कनाडा की गैब्रियला डोब्रोवस्की की जोड़ी से हार गई। सानिया डॉडिंग की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मैच में बोपन्ना डोब्रोवस्की की 7वीं वरीय जोड़ी ने 3-6, 4-6 से मात दी। बोपन्ना डोब्रोवस्की शुरू से ही विपक्षी जोड़ी पर हावी रहे और उन्होंने ये मुकाबला जीतने में 92 मिनट का समय लिया।
बहुत बहुत धन्यवाद राखी आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। सऊदी अरब समेत 6 देशों की ओर से कूटनीतिक संबंध खत्म किए जाने के बाद कतर ने बातचीत की पेशकश की है। सीरिया में अमरीकी सेना के आला कमांडर ने जानकारी दी है कि इस्लामिक स्टेट को रक्का से बाहर निकालने का संघर्ष शुरू हो चुका है। रक्का अभियान को लेकर तुर्की ने अमेरिका पर चरमपंथी संगठन के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान से मिली रिपोर्टों के मुताबिक हेरात में हुए धमाके में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो के इंचार्ज थे अजीत सारथी। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।